हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जीवात्मा प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा का सृजन होता है जब वो व्यक्त होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो महाप्रलय होती है उसमें सारे जीवात्माएं गर्भोदकाशायी विष्णु के शरीर में निवास करते हैं, और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और जो जीव मुक्त नहीं होते तो वो कारणोदकाशायी विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दो प्रकार की अव्यक्त स्थिति रहती है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है और गर्भोदकाशायी विष्णु के शरीर में हम चले जाते हैं तब हमारा भौतिक शरीर नहीं रहता है और हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, और वापस जब हम भगवान ब्रह्मा जी का अगले दिन होता है तो ब्रह्मा जी के अगले दिन में जब हम लोगों को हमारे जो पूर्वगत कर्म हैं और हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुसार फिर से हमको स्थूल शरीर दिया जाता है भोग करने के लिए या भक्ति करके या योग की साधना करके मुक्त होने के लिए। तो यानी प्रारंभ में हम अव्यक्त रहते हैं, या तो गर्भोदकाशायी विष्णु के शरीर में या फिर कारणोदकाशायी विष्णु के शरीर में, इस प्रकार से प्रायः, और फिर उनके द्वारा वापस इस जगत में हम स्थापित किए जाते हैं। स्थूल शरीर हमको दिया जाता है जिसका कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। हर जीवात्मा के अनुसार क्या कर्म है, क्या इच्छा है, उसके अनुसार उसको शरीर देते हैं, ये उनकी सेवा है। और यहाँ पे कुछ समय के लिए हम शरीर धारण करते हैं और फिर जब प्रलय होती है तो उसमें प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा एक अर्थ और भी है कि हमारा शरीर जिस रूप में अभी है वो पहले नहीं था, और जीवात्मा के प्रवेश के कारण वो शरीर व्यक्त होता है, प्रस्तुत होता है, और फिर शरीर नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस पूरे प्रसंग में आत्मा समान रूप से रहती है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है और आत्मा इस सारे परिवर्तन से पृथक है। इस कारण से हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा इस परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। क्यों नास्तिक कहते हैं? क्योंकि वेदों में आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वो वस्तुतः वेदों को नहीं मानते, और वेदों की आज्ञा को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण क्यों नहीं है? क्योंकि भौतिक पदार्थ पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये भौतिक पदार्थों के संग भी होता है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्त्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि जब ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं होती है तो जितने भौतिक तत्व होते हैं वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि। तो ये इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि सूक्ष्म अवस्था का अर्थ है जिससे हमारी भौतिक इंद्रियां, जड़ इंद्रियां देख ना पाएं, महसूस ना कर पाएं। इसका अर्थ निराकार नहीं होता है, इसका अर्थ शून्य नहीं होता है। जैसे अपने मन को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा मन का कोई आकार नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है या वह अव्यक्त है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भौतिक तत्वों की जो सृष्टि है वो निराकार से नहीं होती है, उसके आधार भी भगवान हैं। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, और आप देख सकते हैं एक एलिमेंट पिछले एलिमेंट से अधिक स्थूल है। जैसे आकाश को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, आकाश यानी स्पेस, उसमें हम रहते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, जला नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन उसी आकाश से वायु उत्पन्न होती है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अगर वायु आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन देखने की क्षमता के परे है वायु। ऐसे ही वायु से अग्नि प्रकट होती है, तो अग्नि और स्थूल जाती है, इसको आप स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप उसको तोल नहीं सकते। तो अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं कितना लीटर है इत्यादि। और जल से पृथ्वी होती है, इसको आप तोल सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ऐसे करके। तो सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व का निर्माण हो रहा है, यहां ये बात समझाई जा रही है। यानी या कह सकते हैं अव्यक्त से व्यक्त अवस्था प्रकट हो रही है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। अद्भुत बात है कि आप एक महान बिल्डिंग को पृथ्वी की व्यक्त अवस्था के रूप में आप समझ सकते हो। वो बिल्डिंग है पृथ्वी में, लेकिन अव्यक्त रूप में। लेकिन जब एक कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, चेतनशील जीवात्मा, उस पर कार्य करता है, तो उनकी शक्ति से और भगवान की शक्ति से वो पृथ्वी ही रूपांतरित होकर के विशाल गगनचुंबी इमारत के साथ के रूप में प्रकट या व्यक्त हो जाती है। इसी संबंध में हमको अव्यक्त और व्यक्त को समझना चाहिए। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। जब कोई बिल्डिंग है तो उसके ईंटें हैं या जो गारा है, सीमेंट है, वो भी परमाणुओं से बना हुआ है, और जब अव्यक्त हो जाएगा तब भी परमाणुओं से बना रहेगा, केवल व्यक्तता और अव्यक्तता का अंतर रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल कर्म से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, शक्ति को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते हो, खाली शक्तियों का परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शक्तियों का कभी ह्रास नहीं हुआ है, केवल उनका रूपांतरण हुआ है। ये बात पे आप विचार करें तो सोचेंगे कि हम लोग कितने अज्ञान में हैं। इस बहुमूल्य मानव जीवन को हम धन कमाने में व्यतीत कर देते हैं, या केवल धन कमाने में व्यतीत कर देते हैं, और हम वस्तुतः देखें तो धन है क्या, धन बना किससे है, कागज से बना है। कागज किससे बना है, लुगदी से बना है। लुगदी कहाँ से आती है, पेड़ से आती है। तो कोई व्यक्ति आपको कुछ धन दे रहा है 40-45 हज़ार, तो वस्तुतः आपको कुछ लुगदियाँ ही दे रहा है, और हम सब लोग इस लुगदी के कारण अपना जीवन बेच देते हैं कुछ लोगों के लिए। वो मानव जीवन जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, वो मानव जीवन जो एक बार खो जाने के बाद कितना भी पैसा देने के बाद नहीं मिलने वाला है। तो हम बुद्धू लोगों को सोचना चाहिए कि मैं अपना मानव जीवन कुछ लुगदियों के लिए क्यों बेच दूं। यह बोलना आसान है, लेकिन जब हम उन लुगदियों के या लुगदी इकट्ठा करने वालों के बीच में रहते हैं तो हम भी लुगदी इकट्ठा करने वाले ही बन जाते हैं। इस जगत का एक दुख देने वाली बात है कि जिन लोगों का हम संग करते हैं, जो अज्ञानियों का संग करते हैं, तो अज्ञान से ही हमारा चेतना भर जाती है, और अपने आत्म तत्व को नहीं देख पाते, इसके बारे में आगे के श्लोक भी चर्चा करेगा। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती, मतलब कि जब जैसे कि वो बिल्डिंग का एग्जांपल दिया जाए, जब बिल्डिंग भी टूट गई है तो भी जो उसका ईंटा गारा है, जो भी है, जो पृथ्वी का तत्व है, वो रहता है, भले ही वो बिल्डिंग के रूप में न रहे। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। यानी कि शक्ति वही रहती है, खाली रूप परिवर्तन हो जाता है, इसके लिए व्यक्ति शोक नहीं करता। जैसे अपने शरीर को हम देख सकते हैं, बचपन में शरीर था वो भी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना था, और अब जो शरीर है वो भी उसी से बना हुआ है, और वो शरीर पूरी तरह से चला गया, और कोई भी व्यक्ति जगत में शोक नहीं करता कि बचपन से मैं अब बड़ा हो गया हूँ, वो शरीर कहाँ चला गया, कोई जगत में शोक नहीं करता, बल्कि बड़ा खुश होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाते हैं तब जरूर हम सोचते हैं मैं जवान था, लेकिन एक्चुअली केवल शरीर जवान था। फिर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शरीर है वो उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है, हो सकता है उसमें क्रियाशीलता की कमी आ गई हो। यदि आप बूढ़े हों या हम लोग बूढ़े हों और हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हों, केवल झुर्रियां पड़ जाएं, लेकिन अगर खाने पीने की उतनी शक्ति रहे, देखने की उतनी शक्ति रहे, सोचने की उतनी शक्ति रहे, चलने फिरने की शक्ति भी उतनी रहे, तो कोई व्यक्ति बुढ़ापे को भी बुरा नहीं मानेगा। लेकिन बुढ़ापे में केवल स्किन ही हमारी ढीली नहीं होती है, बाकी इंद्रियां भी ढीली हो जाती हैं। इस कारण से लोग बुढ़ापे से डरते हैं, बुढ़ापे को पसंद नहीं करते। लेकिन बुढ़ापे का शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। यदि हम भगवद्गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरणा, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र या परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवद्गीता को पढ़ करके इस निष्कर्ष पर आ जाएगा कि शोक करने से आवश्यकता नहीं है, शोक करने की बजाय कार्य करना चाहिए, भगवत भक्ति में लगना चाहिए। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अभी आज में भी रात का समय है, थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगा, तो हम स्वप्न देखेंगे, और स्वप्न जब हम देखते हैं तो स्वप्न में किसी से लड़ते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, किसी से कोई बिजनेस का टाई अप करते हैं, और इन सबको बहुत महत्व मानते हैं। लेकिन जब हम जग जाते हैं तो उन वस्तुओं के लिए कोई खास महत्व नहीं होता है हमारे यथार्थ के जीवन में। ऐसे ही इस समय भी हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हुए एक जागृत स्वप्न में जी रहे हैं, जहां अपने को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, जो भी मान रहे हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप से कृष्ण के दास हैं। तो अगर इस वास्तविकता में हम जागृत हो जाते हैं, तो फिर ये सारी जीवन जगत के जो स्वप्न है या जो क्रियाएं हैं वो स्वप्नवत ही होंगी, और उनको बहुत महत्व नहीं देंगे। हो सकता हो आपको बहुत अच्छा स्वप्न आए कि आप करोड़पति हो गए हैं, लेकिन उठने के बाद खाली यही बोलेंगे कि अच्छा स्वप्न था। हो सकता हो एक भूत प्रेत के सपने आए, बहुत पुराने सपने आए, मार रहा है, तो भी उठने के बाद क्या बोलेंगे, बस एक बुरा स्वप्न था। तो उसी प्रकार से हरि नाम के प्रभाव से, हरि कथा के प्रभाव से, भगवान का प्रसाद खा के, एसेंशियली भक्ति करके, अगर हम जागृत हो जाते हैं, हम वाकई अपनी चेतना में आ जाते हैं, तो वाकई इस जगत की सुख और दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। और पूरी तरह जागृत होने से पहले कम से कम व्यक्ति आधे रूप से जागृत हो, यानी कि सतगुण में तो आए, फिर वो समझ पाएगा कि मेरा इस जगत से कोई संबंध नहीं है, और इसी कारण से वैराग्य होना, अनासक्ति होना, ये अपने आप होने लगता है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैदिक ज्ञान हमको धर्म करने के लिए बोलता है, और इसमें अगर शारीरिक रूप से कुछ कष्ट आए या कुछ आसक्ति का अनुभव करे, तो व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से उसको त्यागने के लिए उद्यत रहना चाहिए। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवद्गीता को पढ़ने का सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमारा शोक नष्ट हो जाएगा, जिसको हम हजारों डॉलर रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम भगवद्गीता का एक श्लोक तो पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, उसे विचार करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।